नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के 3 दिवसीय दौरे पर, कल राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे चिकित्सकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केदारनाथ यात्रा में अब तक 3 अरब का कारोबार, 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन और बद्रीनाथ के देवदर्शनी में तीर्थयात्रियों को जाम से मिलेगी निजात। देश के सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पहली बार शुरू हुई फास्टैग सेवा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर आज देहरादून पहुंची। जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। श्रीमती मुर्मू कल राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। वे 132 एकड़ में विकसित होने वाले राष्ट्रपति उद्यान पारिस्थितिकीय पार्क की आधारशिला भी रखेंगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन को आम जनता के लिए 24 जून से खोला जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर देहरादून में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे चिकित्सकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित चिकित्सकों को शीघ्र नियुक्ति देने को भी कहा। आज देहरादून में शासकीय आवास पर डॉ. रावत ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा कर उन्हें जरूरी निर्देश दिए। आगामी 24 जून को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में ठोस और नवाचार परक प्रस्ताव तैयार करने और राज्य में बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आगामी 24 जून को वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित होगी। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय की भावना के अनुरूप ऐसे ठोस और नवाचार परक प्रस्ताव तैयार करने को कहा, जो प्रदेश के समग्र, सतत और संतुलित विकास को नई गति प्रदान कर सकें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में बच्चों के पोषण, शारीरिक और मानसिक विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने महिला और बाल विकास विभाग को नियमित रूप से कुपोषण और अनीमिया के मामलों की समीक्षा करने तथा बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता आवश्यक समय पर इस सुविधा का लाभ ले सके। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताज़ा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के के नेतृत्व में कोतवाली परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से आए व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, वरिष्ठ नागरिकों और आमजन ने अपनी समस्याएं रखीं। पुलिस अधीक्षक ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। जनता दरबार में प्रमुख रूप से नशा मुक्त बागेश्वर अभियान को लेकर चर्चा हुई। स्थानीय नागरिकों और संगठनों ने क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी पर चिंता व्यक्त की और इससे निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने की मांग की। साथ ही यातायात व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम और बाजार की सुरक्षा जैसे विषयों पर भी सुझाव दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच की दूरी को कम करना और पारदर्शिता के साथ जन सुनवाई करना रहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर उचित मांग और शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।
आज यहाँ पे कोतवाली बागेश्वर में जो है एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें बागेश्वर जनपद के बागेश्वर थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित जनता के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लोगों ने सुझाव दिए। कुछ समस्याएं जो है खासकर नशे को लेकर उनकी चिंता प्रदर्शित की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ यहाँ पे सुझाव आए हुए हैं। तो इसके बारे में जो पुलिस विभाग द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है उनके बारे में भी इन सभी सम्मानित जनों को अवगत कराया गया तथा उनके जो सुझाव थे, जो समस्या थी, उनके आगे के लिए बेहतर कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश, आवश्यक निर्देश जो है सभी संबंधित को दिए गए हैं।
केदारनाथ धाम यात्रा तीर्थाटन के साथ ही आर्थिकी के नए कीर्तिमान रच रही है। 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद अब तक 48 दिनों में 11,40,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर, डंडी कंडी, हेली सेवा, होटल रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं के जरिए करीब 3 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। स्थानीय लोगों को भी इससे व्यापक रोजगार मिला है। एक रिपोर्ट।
अब तक 2,27,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने घोड़े खच्चरों के माध्यम से यात्रा की है, जिससे लगभग 66,74,00,000 रुपए की आय हुई। डंडी कंडी सेवा से भी यात्रा को मजबूती मिली है। इस साल 7,000 से अधिक डंडी कंडी संचालक पंजीकृत हैं, जिनके जरिए 2,02,00,000 रुपए की आय अर्जित हुई। हेली सेवा भी सुगम तीर्थ यात्रा का अनुभव दे रही है। 49,247 श्रद्धालु अब तक हेली सेवा से केदारनाथ पहुँचे हैं, जिससे करीब 60 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। वर्तमान 8 हेली कंपनियां 9 हेलीपैड से सेवाएं दे रही हैं। शटल सेवा भी यात्रियों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक तीर्थयात्रियों को लाने के लिए 225 वाहन पंजीकृत हैं और इनके माध्यम से अब तक 11 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हुई है। केदारपुरी में ठहरने की व्यवस्था GMVN और स्थानीय व्यापारियों द्वारा की जाती है। होटल, रेस्टोरेंट और टेंट व्यवसायियों ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य की 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए संसाधनों का विकास किया जा रहा है। इसके तहत अब बद्रीनाथ धाम में नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से लिए जाने वाले इको पर्यटन शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया गया है। धाम में नगर पंचायत की ओर से फास्टैग की सुविधा का आज चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री वाहनों से इको पर्यटन शुल्क लिया जाता है। इसे अभी तक नगद और QR कोड के से भुगतान की सुविधा के साथ संचालित किया जा रहा था, लेकिन तीर्थयात्रियों की अधिक आमद से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान देवदर्शनी में जाम की स्थिति बन रही थी। इसे देखते हुए अब इको पर्यटक शुल्क के भुगतान के लिए फास्टैग सुविधा का संचालन शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चंपावत जिले के गौरल चौड़ मैदान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वन एवं पर्यावरण समिति के उपाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री पांडे ने कहा कि युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकना होगा, ताकि प्रधानमंत्री के युवा भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। पौड़ी जिले में गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन में आज विशेष योगाभ्यास सत्र आयोजित किया गया। सत्र में 1,500 से अधिक सैन्य अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के 3 दिवसीय दौरे पर कल राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे चिकित्सकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केदारनाथ यात्रा में अब तक 3 अरब का कारोबार, 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन और बद्रीनाथ के देवदर्शनी में तीर्थयात्रियों को जाम से मिलेगी निजात। देश के सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पहली बार शुरू हुई फास्टैग सेवा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।